ये रेडियो नेपाल है। हिंदी समाचार में आपका स्वागत है और मैं हूं मुकेश कुमार मिश्र। आरंभ में मुख्य समाचार शीर्षक। देश के अलग अलग हिस्से में आई बाढ़ व भूस्खलन से 17 लोगों की मौत, 42 लापता। बाढ़ भूस्खलन के जोखिम न्यूनीकरण के लिए सरोकार वाले निकायों के समन्वय में आपदा व्यवस्थापन को प्रभावकारी बनाने की बात पर राष्ट्रपति ने दिया जोर। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा की स्थायी कमेटी बैठक एक हफ्ते के लिए स्थगित। आज फिर से देश भर में 120 लोग हुए कोरोना मुक्त और दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की तादाद हुई 1 करोड़ 24 लाख के पार। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने पार्टी के भीतर दिख रहे विवाद को आंतरिक मामला बताते हुए जनता के जीवन रक्षा में जुटने का सभी से आह्वान किया है। आज टेलीविजन संबोधन मार्फत प्रधानमंत्री ने ऐसा आह्वान किया है। देश के विभिन्न जिलों में आई बाढ़ व भूस्खलन में जान गंवाने वालों की तादाद 17 हो गई है। वहीं इन हादसों में अन्य 42 लोग लापता हैं। जाजरकोट की बारेकोट गांवपालिका वार्ड नंबर 4 सारकी गांव में भूस्खलन के साथ घर बह जाने से 7 लोगों की मौत हो गई और अन्य 7 लोग लापता हो गए। भूस्खलन में लापता हुए लोगों में से 52 वर्षीय गोपाल सारकी, उनके 11 वर्षीय बेटे अर्जुन सारकी, 18 वर्षीय वीरेंद्र सारके और मेहमान बनकर आए हुए कुशे गांवपालिका वार्ड नंबर 9 चौतारा के 20 वर्षीय दिल्ली सारके समेत 7 लोगों के शव पाए गए। उनमें से 3 लोगों की पहचान नहीं खुल सकी है। इस हादसे में लापता हुए 7 लोगों की खोज की जा रही है। ये बात गांवपालिका के अध्यक्ष महेंद्र बहादुर शाह ने बताई। इसी गांवपालिका के वार्ड नंबर 6 धुमा में बाढ़ में बह गए 20 वर्षीय शांत बहादुर चलावने और 10 वर्षीय प्रचंड चलावने लापता हैं। खबरों के मुताबिक लगातार बारिश के साथ ही घना कोहरा छाने के कारण उद्धार में कठिनाई हो रही है। भूस्खलन की त्रासदी के कारण बारेकोट गांवपालिका के 2000 परिवार विस्थापित हो चुके हैं। विस्थापितों को सरकारी दफ्तरों और स्कूलों में रखा गया है। इसी तरह म्यागदी में कई घर भूस्खलन की चपेट में आ जाने से 3 लोगों की मौत हो गई और अन्य 31 लोग लापता हैं। इसी तरह 37 घर भूस्खलन में तबाह हो जाने के कारण धवलागिरी वार्ड नंबर 7 में 21, मालिका वार्ड नंबर 7 भीम में 9 और मंगला वार्ड नंबर 6 में 1 व्यक्ति समेत 37 लोग लापता हैं। लगातार की बारिश के कारण उद्धार में खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कलेश्वर में मौजूद बेली ब्रिज बाढ़ में बह जाने की वजह से बेनी जोमसुम सड़क खंड अवरुद्ध है। इसी तरह कास्की की पोखरा महानगर पालिका वार्ड नंबर 18 सारांगकोट के कोठादी में टंक बहादुर थापा का घर भूस्खलन में दब जाने से 5 लोगों की मौत हो गई है। इस हादसे में अन्य 8 लोग घायल हैं, जिनका इलाज मणिपाल शिक्षण अस्पताल पोखरा में चल रहा है। पोखरा के ही वार्ड नंबर 25 हेमजा में घर भूस्खलन में दब जाने से 1 70 वर्षीय वृद्धा और वार्ड नंबर 26 पैतेडाड़ा में 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। दूसरी तरफ लमजुंग की बेसी शहर नगर पालिका वार्ड नंबर 7 में भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम में नदी में बह जाने से 2 किशोर लापता हो गए। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने मॉनसून से उत्पन्न आपदा का सामना करने के लिए की गई पूर्व तैयारी, देश के विभिन्न जिलों में बाढ़, भूस्खलन और डूबान से हुए जानमाल के नुकसान और प्रभावितों के उद्धार, राहत और पुनर्स्थापना को लेकर हुए कामों के विषय में जिज्ञासा रखी है। आज राष्ट्रपति भवन में सरोकार वालों के साथ हुई बातचीत के दौरान प्राकृतिक आपदा से हुई जनधन की क्षतियों के प्रति दुख जताते हुए राष्ट्रपति भंडारी ने आपदा व्यवस्थापन को प्रभावकारी बनाने की बात पर जोर दिया था। बार बार स्थगित होने के बाद आज के लिए निर्धारित सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा की स्थायी कमेटी की बैठक को आने वाले सावन 2 गते शुक्रवार तक के लिए टाल दिया गया है। प्राकृतिक आपदाओं के कारण संभावित क्षतियों को भरसक रोकने के काम में जुटने का पार्टी मुख्यालय की ओर से निर्देश जारी करते हुए 7 दिनों तक स्थायी कमेटी की बैठक स्थगित होने की जानकारी दी गई है। नेकपा के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ ने अपने ट्वीट के जरिए ये जानकारी साझा की है। अपने ट्वीट में उन्होंने ये भी बताया है कि पार्टी पंक्ति को बाढ़, भूस्खलन, लगायत से प्रभावितों के उद्धार व राहत काम में जुटने का निर्देश किया गया है। नेपाली कांग्रेस ने बाढ़, भूस्खलन व डुबान के कारण देश के अलग अलग हिस्से में हुई जनधन की क्षति और प्रभावितों की बढ़ी मुश्किलों के प्रति दुख जताया है। कांग्रेस सभापति शेर बहादुर देववा ने आज एक बयान जारी कर प्रभावितों के उद्धार और राहत वितरण के काम को प्रभावकारी बनाने का सरकार से आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने प्रभावित स्थानों के पार्टी कार्यकर्ताओं और शुभेच्छुक संस्थाओं को पीड़ितों के आवश्यक सहयोग में जुटने का निर्देश भी किया है। नेपाल तरुण दल ने बाढ़ और भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों में उद्धार और राहत के कार्य में जुटने का कार्यकर्ताओं को निर्देश किया है। नेपाल तरुण दल के अध्यक्ष जीतजंग बस्नेत ने आज एक बयान जारी करते हुए स्थानीय समाजसेवी संस्थाओं से सहकार्य करने का भी आग्रह किया है। समाचार आप रेडियो नेपाल से सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर व्यावसायिक संदेश।
14-15 बजारमा नयाँ कि छैन। नेपाल टेलिकमका विभिन्न सेवाका अफरहरू सस्तो, साह्रै सस्तोमा खरिद गर्न परेमा *14-15 ह्यास डायल गर्नु पर्ने रहेछ, त्यही भएर कण्ठ पारिरख्या
हो र दाई।
त्यति मात्र हो र भाइ, नेपाल टेलिकमले विभिन्न समयमा ल्याउने विभिन्न अफरको बारेमा थाहा पाउन पनि *14-15 ह्यास डायल गर्नु पर्ने रहेछ नि त।
14-15 मलाई पनि कण्ठै भयो दाई।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। कालीगण्डकी नदी में पानी का स्तर फिर से बढ़ गया है। इस वजह से पर्वत का सेती बाजार जलमग्न हो चुका है। कालीगण्डकी नदी में पानी का बहाव बढ़ने के बाद बाजार डूब चुका है, ये जानकारी स्थानीय दिनेश भूषाल ने दी। मुस्तांग, म्यागदी, बागलुंग और पर्वत में भीषण वर्षा के कारण कालीगण्डकी में डुबान की स्थिति बनी हुई है। इस दौरान सेती बेनी बाजार को डुबान से बचाने के लिए जिला प्रशासन कार्यालय पर्वत और स्यांगजा ने कालीगण्डकी ए जलविद्युत केन्द्र के बांध के सभी दरवाजों को खोलने का अनुरोध किया है। कोसी बैरेज में पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर उठ जाने के कारण खतरे की लाल बत्ती जला दी गई है। कोसी बैरेज कंट्रोल रूम के दोपहर 12 बजे के मापन के मुताबिक पानी का बहाव प्रति सेकंड 2,25,055 क्यूसेक पहुंच चुका है। खबर के मुताबिक पानी की सतह बढ़ने के बाद बैरेज के 33 दरवाजे खोल दिए गए हैं और सुरक्षा कर्मचारियों को हाई अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही पानी का बहाव और बढ़ सकने की संभावना जताई गई है। बीती रात से हो रही लगातार बारिश के कारण रौतहट, बारा, परसालागा, तराई के विभिन्न जिलों का जनजीवन प्रभावित बना हुआ है। बाढ़ के पानी का बहाव सड़क से ऊपर पहुंच जाने के कारण महेंद्र राजमार्ग भी अवरुद्ध है। बकाया और बागमती नदियों में पानी का स्तर बढ़ना शुरू होने के बाद स्थानीय प्रशासन ने सजग रहने का सभी से अनुरोध किया है। सल्यान की कपूरकोट गांवपालिका 3 कपूरकोट खारा के 100 से अधिक घर भूस्खलन के उच्च जोखिम में हैं। कपूरकोट बाजार व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष रूपक बुढ़ा ने बताया कि भूस्खलन के जोखिम से लोगों को बचाने के लिए अब तक 3,80,00,000 से अधिक रुपए खर्च हो चुकने के बाद भी अब तक भूस्खलन आने का दौर जारी ही है। इसी तरह कल से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से बागलुंग की लारा खोला गांवपालिका के 25 से अधिक घर भूस्खलन के उच्च जोखिम में हैं। इसके साथ ही भारी बारिश के बाद आए भूस्खलन से मध्य पहाड़ी पुष्पलाल लोकमार्ग के बागलुंग बुर्तिबांग खंड अवरुद्ध बना हुआ है। जिला आपदा व्यवस्थापन समिति द्वारा तैयार किए गए आपदा पूर्व तैयारी व प्रतिकार्य योजना के अनुसार बैतड़ी के 8 स्थानीय तह भूस्खलन के उच्च जोखिम में हैं। इस बात की जानकारी बैतड़ी के सहायक प्रमुख जिला अधिकारी लोकेन्द्र सिंह नेगी ने दी, जिनमें मेलौली नगरपालिका, दोग डाक केदार गांवपालिका, पुरचांडी नगरपालिका, सिगास गांवपालिका, शिवनाथ गांवपालिका, पंचेश्वर गांवपालिका, दशरथ चंद्र नगरपालिका और डेला शैनिक गांवपालिका शामिल हैं। देश के विभिन्न आइसोलेशन सेंटर से आज पुनः 120 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए हैं। नेपाल में अब तक 8,011 लोग कोरोना मुक्त हो चुके हैं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय की आज की नियमित मीडिया ब्रीफिंग में मंत्रालय के प्रवक्ता प्राध्यापक डॉ जागेश्वर गौतम ने बताया कि आज 120 लोग संक्रमण मुक्त होकर घर लौटे हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि देश के 71 जिलों के 8,603 लोग कोरोना संक्रमण मुक्त हो चुके हैं, जबकि धनकुटा, भोजपुर, सोलोखुम्बू, मुस्तांग और हुमला के सभी संक्रमित ठीक हो चुके हैं। वहीं आज 118 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही नेपाल में कोरोना संक्रमितों की संख्या 16,649 हो गई है। यातायात व्यवसायियों ने यथास्थिति में फिलहाल सार्वजनिक यातायात साधन न चलाने का फैसला लिया है। इस बात के जिक्र के साथ कि सरकार ने बिना पूर्व तैयारी के ही सार्वजनिक यातायात साधन संचालन करने का निर्णय किया है, यातायात व्यवसायियों ने ऐसी अड़ान ली। सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर यथास्थिति में सार्वजनिक गाड़ियां न चलाने का जिक्र करते हुए 5 सूत्रीय मांग भी रखी है, जिनमें विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय किए गए यातायात, मजदूर और लोगों के स्वास्थ्य को दृष्टिगत कर सभी व्यवस्था करने, बैंक की किश्त और ब्याज पर पुनर्विचार करने और कागज पत्र टैक्स छूट लगात मांगे शामिल हैं। नेपाल ऑयल निगम ने पेट्रोलियम की कीमत बढ़ाई है। निगम की संचालक समिति की आज हुई बैठक ने पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल में 1-1 रूपये की दर से मूल्य वृद्धि करने का निर्णय किया है। नए मूल्य अनुसार अब काठमांडू में पेट्रोल प्रति लीटर 102 रूपये, डीजल और मिट्टी का तेल प्रति लीटर 88 रूपये बेचा जाएगा। निगम के प्रवक्ता विनीत मणि उपाध्याय से मिली जानकारी के मुताबिक सिर्फ पेट्रोलियम की कीमत में बढ़ोतरी हुई है, वहीं एलपीजी गैस की कीमत यथावत है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। दुनिया भर में कोरोना वायरस के 1,24,62,000 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं, वहीं मरने वालों की संख्या 5,58,000 से ज्यादा हो गई है। कोरोना से सबसे ज्यादा अमेरिका और ब्राजील प्रभावित हुए हैं। अमेरिका में 32,40,000 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं और 1,36,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं ब्राजील में 17,62,000 से ज्यादा मामले सामने आ गए हैं और 69,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इसी तरह भारत में 8 लाख से अधिक कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंच गई है, जबकि 21,000 से अधिक की मौत हो चुकी है। वहीं रूस में संक्रमितों की संख्या 7,13,000 से अधिक हो चुकी है और 11,000 से अधिक की मौत हो चुकी है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार शीर्षक एक बार फिर। देश के अलग अलग हिस्से में आई बाढ़ व भूस्खलन से 17 लोगों की मौत, 42 लापता। बाढ़ भूस्खलन के जोखिम न्यूनीकरण के लिए सरकार वाले निकायों के समन्वय में आपदा व्यवस्थापन को प्रभावकारी बनाने की बात पर राष्ट्रपति ने दिया जोर। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा की स्थायी कमेटी बैठक 1 हफ्ते के लिए स्थगित। आज फिर देश भर में 120 लोग हुए कोरोना मुक्त और दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों की तादाद हुई 1,24,00,000 के पार। इसी के साथ हिंदी समाचार से मुझे अनुमति दीजिए। सुनते रहिए रेडियो नेपाल। नमस्कार, शुभरात्रि।